नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। द कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम एंड्रू चेन की व्यवसाय और उत्पाद रणनीति पर केंद्रित पुस्तक है। इसका विषय उन डिजिटल उत्पादों की शुरुआती कठिनाई है जिनका उपयोग तभी सार्थक बनता है जब पर्याप्त लोग एक साथ उन्हें अपनाएं। चैट ऐप, मार्केटप्लेस, डेटिंग सेवा और सहयोगी सॉफ्टवेयर इसी चुनौती का सामना करते हैं। चेन, जिन्होंने उबर में राइडर ग्रोथ का नेतृत्व किया और बाद में एंडरसन हॉरोविट्स में निवेशक बने, नेटवर्क इफेक्ट्स को केवल लोकप्रिय व्यावसायिक शब्द नहीं बल्कि विकसित होने वाली व्यवस्था के रूप में समझाते हैं। पुस्तक का उद्देश्य संस्थापकों, उत्पाद प्रबंधकों और निवेशकों को यह भाषा और ढांचा देना है कि शून्य उपयोगकर्ताओं से उपयोगी नेटवर्क तक कैसे पहुंचा जाए। इसकी केंद्रीय अवधारणा एटॉमिक नेटवर्क है, अर्थात लोगों का वह सबसे छोटा सघन समूह जिसके लिए उत्पाद तुरंत काम करने लगता है। उबर, टिंडर, जूम, एयरबीएनबी और ड्रॉपबॉक्स जैसे उदाहरणों के माध्यम से पुस्तक बताती है कि शुरुआती घनत्व, उपयोगकर्ता प्रतिधारण और सही विस्तार क्रम व्यापक लेकिन बिखरे हुए प्रचार से अधिक निर्णायक हो सकते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, एटॉमिक नेटवर्क से शून्य उपयोगकर्ताओं की बाधा तोड़ना पुस्तक का सबसे उपयोगी विचार एटॉमिक नेटवर्क है। इसका अर्थ कुल बाजार में अधिकतम लोगों तक पहुंचना नहीं बल्कि ऐसे न्यूनतम समूह को एक साथ जोड़ना है जिसमें उत्पाद का मूल लाभ वास्तविक और बार बार अनुभव किया जा सके। किसी कार्यस्थल संचार उत्पाद में केवल एक उत्सुक व्यक्ति पर्याप्त नहीं होता, उसकी टीम के आवश्यक सहयोगी भी सक्रिय हों, तभी संदेश, साझा काम और प्रतिक्रिया का चक्र बनता है। इसी तरह राइड शेयरिंग सेवा में यात्रियों और ड्राइवरों की स्थानीय उपलब्धता साथ चाहिए। चेन के अनुसार आरंभ में खाली नेटवर्क उपयोगकर्ताओं को लाभ नहीं देता बल्कि उन्हें छोड़ने का कारण देता है। इसे वे एंटी नेटवर्क इफेक्ट की समस्या के रूप में रखते हैं जहां कम भागीदारी उत्पाद की उपयोगिता और भविष्य की वृद्धि दोनों को कमजोर करती है। इसलिए उत्पाद टीम को भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय, संस्थान या किसी खास उपयोग स्थिति जैसे संकीर्ण दायरे को चुनना चाहिए। इंडर के कॉलेज परिसरों पर केंद्रित आरंभ का उदाहरण इस तर्क को स्पष्ट करता है। वह लक्ष्य पूरे डेटिंग बाजार को एक साथ जीतना नहीं था बल्कि एक परिसर में पर्याप्त सक्रिय लोगों की घनत्व बनाना था। यह दृष्टि बाजार आकार की शुरुआती चिंता को पीछे रखती है। पहले एक छोटा नेटवर्क स्वयं उपयोगी बने, फिर उसी दोहराने योग्य प्रक्रिया से दूसरा नेटवर्क बनाया जाए। पुस्तक के लिए यही कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम का व्यावहारिक उत्तर है। दूसरा, हार्ड और सॉफ्ट नेटवर्क इफेक्ट्स की अलग रणनीति। चेन नेटवर्क इफेक्ट्स को एक समान शक्ति मानने के बजाय उनके संचालन के आधार पर अलग करते हैं। हार्ड नेटवर्क इफेक्ट में उत्पाद की मूल उपयोगिता के लिए दूसरे पक्ष या अन्य सदस्यों की न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य होती है। उबर में चालक और यात्री, एयरबीएनबी में मेजबान और अतिथि या किसी टीम संचार उपकरण में सहकर्मी इस परस्पर निर्भरता के उदाहरण है। यदि जरूरी पक्ष अनुपस्थित हो तो नया उपयोगकर्ता मूल्य नहीं देखता और जल्दी छोड़ सकता है। इसलिए ऐसे उत्पादों की शुरुआती रणनीति में आपूर्ति और मांग दोनों को संतुलित करना पड़ता है। दूसरी ओर, सॉफ्ट नेटवर्क इफेक्ट वाले उत्पाद सीमित उपयोगकर्ताओं के साथ भी कुछ व्यक्तिगत लाभ दे सकते हैं लेकिन अधिक भागीदारी से उनकी सामग्री, खोज, प्रतिष्ठा या संवाद की गुणवत्ता बढ़ती जाती है। यह भेद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि समान अधिग्रहण रणनीति दोनों पर लागू नहीं होती। हार्ड नेटवर्क में गलत शहर, गलत समूह या असंतुलित पक्ष पर खर्च किया गया प्रचार बेकार जा सकता है। सॉफ्ट नेटवर्क में व्यक्तिगत उपयोगिता, सामग्री या साझा करने की सुविधा से शुरुआती अपनाव अधिक संभव हो सकता है। पुस्तक संस्थापकों को यह पहचानने के लिए प्रेरित करती है कि उनके नेटवर्क का कठिन पक्ष कौन सा है। कई मामलों में वही पक्ष सबसे महंगा, धीमा या भरोसे पर निर्भर होता है। उसे हल किए बिना केवल उपयोगकर्ता संख्या बढ़ाना सतही प्रगति है। यह विश्लेषण उत्पाद डिजाइन, प्रोत्साहन और स्थानीय विस्तार के निर्णयों को अधिक यथार्थवादी बनाता है। तीसरा, टिपिंग पॉइंट और एस्केप वेलोसिटी में वृद्धि का बदलता अर्थ। कोल्ड स्टार्ट थ्योरी में शुरुआती नेटवर्क बनाने के बाद काम समाप्त नहीं होता। चेन पांच अवस्थाओं का ढांचा देते हैं जिनमें कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम के बाद टिपिंग पॉइंट और एस्केप वेलोसिटी प्रमुख है। टिपिंग पॉइंट वह चरण है जहां पर्याप्त सक्रियता के कारण प्रत्येक नया उपयोगकर्ता नेटवर्क को कुछ अधिक उपयोगी बनाता है। इससे अपनाव, सहभागिता और रेफरल के बीच सकारात्मक चक्र शुरू हो सकता है। लेकिन पुस्तक का तर्क यह नहीं है कि किसी एक वायरल क्षण से स्थायी सफलता मिल जाती है। एस्केप वेलोसिटी में कंपनी को उस लाभ को लगातार तेज और व्यापक वृद्धि में बदलना होता है। यहां उत्पाद की आदत बनने की क्षमता, उपयोगकर्ता अनुभव, विश्वसनीयता और विस्तार की गति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चेन विशेष रूप से प्रतिधारण और सहभागिता को उपयोगी संकेतक मानते हैं, क्योंकि केवल डाउनलोड पंजीकरण या भुगतान आधारित अधिग्रहण नेटवर्क की वास्तविक ताकत नहीं दिखाते। यदि नए लोग आते हैं पर लौटते नहीं तो वृद्धि का आधार कमजोर है। इसी कारण पुस्तक जैविक आकर्षण को महत्व देती है। जब मौजूदा उपयोगकर्ता उत्पाद के कारण दूसरों को लाते हैं या उनकी गतिविधि दूसरों के लिए उत्पाद बेहतर करती है, तब वृद्धि अधिक टिकाऊ हो सकती है। फिर भी यह मापदंड हर उद्योग के लिए एक जैसा नहीं है। पाठक को आंकड़ों को उत्पाद की प्रकृति, खरीद चक्र और उपयोग की आवृत्ति के संदर्भ में देखना चाहिए। ढांचे का मूल्य किसी जादुई संख्या में नहीं, बल्कि इस प्रश्न में है कि क्या वृद्धि बढ़ती उपयोगिता और टिकाऊ प्रतिधारण से संचालित है। चौथा, स्केल पर पहुंचकर सीलिंग और नेटवर्क क्षय का प्रबंधन। पुस्तक नेटवर्क इफेक्ट्स को स्थायी और स्वचालित लाभ मानने की भूल से बचाती है। चेन के ढांचे में हिटिंग द सीलिंग वह अवस्था है जब तेज वृद्धि धीमी पड़ने लगती है। संभावित कारणों में स्थानीय बाजार का भर जाना, उपयोगकर्ता अनुभव का बिगड़ना, नए समूहों में कम प्रासंगिकता, प्रतिस्पर्धा और नेटवर्क के भीतर गुणवत्ता की समस्या शामिल हो सकती है। उदाहरण के लिए, बहुत अधिक सामग्री किसी सामाजिक या खोज आधारित उत्पाद को बेहतर बनाने के बजाय शोर बढ़ा सकती है। किसी मार्केटप्लेस में असंतुलित आपूर्ति, कम भरोसा या खराब लेनदेन अनुभव भागीदारी घटा सकता है। इसलिए विस्तार का लक्ष्य केवल अधिक खाते बनाना नहीं है। कंपनी को समझना होता है कि किस स्तर पर नेटवर्क की गुणवत्ता, मेल, संवाद या भरोसा कमजोर हो रहा है। यह विचार प्रारंभिक एटॉमिक नेटवर्क की धारणा से जुड़ता है। आरंभ में घनत्व उपयोगिता पैदा करता है, लेकिन बड़े स्तर पर वही घनत्व अव्यवस्था स्पैम या कम गुणवत्ता वाले संपर्कों में बदल सकता है यदि उत्पाद के नियम विकसित न हो। पुस्तक इस चरण में नए उत्पाद सुधार, नए बाजार, बेहतर मिलान, समुदाय नियंत्रण और अलग नेटवर्कों के निर्माण जैसे विकल्पों की आवश्यकता दिखाती है। पाठक के लिए व्यावहारिक संदेश है कि वृद्धि दर में गिरावट को केवल विपणन समस्या न समझे। पहले जांचे कि नेटवर्क की मूल उपयोगिता, संतुलन और प्रतिधारण कहां कमजोर हो रहे हैं। यह दृष्टिकोण नेताओं को विस्तार के साथ आने वाले संरचनात्मक जोखिमों को पहचानने में मदद करता है। अंत में, नेटवर्क इफेक्ट को प्रतिस्पर्धी खाई में बदलने की सीमाएं कोल्ड स्टार्ट थ्योरी की अंतिम अवस्था द मोट है, जहां नेटवर्क इफेक्ट कंपनी को प्रतिस्पर्धियों के विरुद्ध बचाव देता है। यह बचाव इसलिए बनता है क्योंकि एक स्थापित नेटवर्क के पास सक्रिय संबंध, लेन देन इतिहास, सामग्री, व्यवहार संबंधी ज्ञान और उपयोग की आदतें हो सकती हैं। नए प्रतिद्वंद्वी के लिए केवल समान फीचर बनाना काफी नहीं रहता। उसे उपयोगकर्ताओं को उस जीवंत नेटवर्क से हटाकर अपने खाली या कम सघन नेटवर्क में लाना पड़ता है। पुस्तक इसी कारण नेटवर्क इफेक्ट्स को तकनीकी उत्पादों की शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी संपत्ति मानती है। फिर भी चेन का विश्लेषण इसे अजेय दीवार नहीं कहता। नेटवर्क कमजोर हो सकते हैं यदि अनुभव खराब हो, उपयोगकर्ता नए संदर्भ में चले जाए, नेटवर्क की गुणवत्ता घटे या कोई प्रतियोगी अलग एटॉमिक नेटवर्क से बेहतर उपयोगिता बनाना शुरू कर दे। बड़े वितरण चैनल भी अपने आप नई सामाजिक या सहयोगी आदत नहीं बना देते। यह बिंदु उन कंपनियों की सीमाओं को समझाता है जो केवल प्रतिलिपि या व्यापक प्रचार से स्थापित नेटवर्क को हराना चाहती है। संस्थापकों के लिए निहितार्थ दोहरा है। उन्हें आरंभ से ऐसे व्यवहार, डेटा और संबंधों को समझना चाहिए जो उत्पाद को समय के साथ अधिक मूल्यवान बनाते हैं। साथ ही उन्हें यह भी मानकर चलना चाहिए कि खाई की रक्षा उत्पाद गुणवत्ता और नेटवर्क स्वास्थ्य के सतत प्रबंधन से होती है। इस तरह पुस्तक नेटवर्क इफेक्ट को रणनीतिक लाभ और निरंतर परिचालन जिम्मेदारी दोनों के रूप में प्रस्तुत करती है। निष्कर्ष में, द कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम उन संस्थापकों, उत्पाद प्रबंधकों, ग्रोथ टीमों और निवेशकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो ऐसे उत्पादों का मूल्यांकन या निर्माण कर रहे हैं जिनकी उपयोगिता अन्य लोगों की भागीदारी से बढ़ती है। मार्केटप्लेस, सामाजिक उत्पाद, संचार उपकरण, समुदाय आधारित सेवाएं और सहयोगी सॉफ्टवेयर इसके सबसे प्रत्यक्ष संदर्भ है। फिर भी पुस्तक का लाभ केवल तकनीकी कंपनियों तक सीमित नहीं है। यह किसी भी व्यक्ति को सिखाती है कि उपयोगकर्ता संख्या और वास्तविक नेटवर्क स्वास्थ्य में अंतर कैसे पहचाना जाए। एटॉमिक नेटवर्क का विचार खास तौर पर व्यावहारिक है क्योंकि यह अस्पष्ट सलाह, जैसे पहले वायरल बनो, को एक ठोस प्रश्न में बदल देता है। किन सही लोगों को किस सीमित संदर्भ में एक साथ सक्रिय करना आवश्यक है, पुस्तक की अलग पहचान इसका चरणबद्ध दृष्टिकोण है। कई ग्रोथ पुस्तकें अधिग्रहण चैनलों, विज्ञापन या उत्पाद प्रयोगों पर केंद्रित रहती है। चेन उनसे आगे जाकर बताते हैं कि नेटवर्क की अर्थव्यवस्था हर चरण में रणनीति क्यों बदलती है, शून्य से उपयोगिता तक, शुरुआती गति से बड़े पैमाने तक। और फिर संतृप्ति तथा रक्षा तक। उबर में उनके अनुभव और लिंक्डइन, जूम, टिंडर, एयरबीएनबी तथा अन्य कंपनियों के उदाहरण ढांचे को ठोस बनाते हैं। पाठक को इसे हर व्यवसाय की सार्वभौमिक विधि नहीं मानना चाहिए। जिन उत्पादों में नेटवर्क इफेक्ट कमजोर है, वहां इसकी उपयोगिता सीमित हो सकती है। फिर भी नेटवर्क आधारित व्यवसायों के लिए यह अवधारणाओं, जोखिमों और मापदंडों को व्यवस्थित ढंग से समझने वाली उल्लेखनीय पुस्तक है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं एंड्रू चेन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।